120 नंबर की गाथा। मेरुस हिठ भाए सत्विरज्जु हवे अहलो उड्डम्मी उड्डलो मेरु समो मज्जिमोलो। अब तीन लोक का जो विभाग है, पहले तो अलोक और लोक का विभाग था, अब लोक में जो तीन भाग हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, उसका विभाग बताते हैं। मेरुस हिठ भाए, गुजराती में भी हेठा शब्द बोलते हैं। एक हेठा का मतलब भोजन जो होता है जूठा, वो हेठा, और फिर एक हेठा मतलब नीचे, तो प्राकृत भाषा में यही शब्द है। तो मेरुस हिठ भाए क्या है कि मूल सब संस्कृत से होते होते, प्राकृत से होते होते बाकी भाषाओं में विभाजन हो गया शब्दों का। हर भाषा में संस्कृत के शब्द मिलेंगे आपको, अंग्रेजी तक में द्वार शब्द है अंग्रेजी में, संस्कृत में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोर। तो द्वार और डोर में कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में द नहीं होता, जो अपन बोलते हैं ना दीक्षा का द, वो द अंग्रेजी भाषा में नहीं होता, अंग्रेजी भाषा में ड होता है, और टी एच ई द अलग होता है, लेकिन डी से द नहीं बनता। इसलिए कभी भी कोई फॉरेनर आता है तो फिर वेर इज आचार्य विद्यासागर ऐसा बोलते, विद्या बोलते हैं वो, क्योंकि उनको द बोलना ही नहीं आता, डी जहां भी लिखा होगा वो द नहीं बोलते, और अपन इंडियंस लोग जो हैं वो डी को द बोलते हैं। दमन वो डमन बोलेंगे, इतना फर्क है। ऐसे और बहुत सारे शब्द, स्मित शब्द है, स्मित शब्द आप गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, स्मित यानी मुस्कान को, हंसने को स्मित बोलते हैं या मुस्कराने को, मुस्कराने को ना, स्माइल करने को, उसको स्माइल बन गया इंग्लिश में, स्मित स्माइल है, मिलता जुलता शब्द। ऐसे कई शब्द हैं जो इंग्लिश में और हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में मिलते जुलते, तो संस्कृत भाषा से हर जगह, उर्दू भाषा में भी कई शब्द संस्कृत से लिए हुए हैं, और अरबी भाषा में, पूरे विश्व में आप देखो तो कहीं ना कहीं कोई शब्द आपको संस्कृत का मिलता रहेगा, नेपाली भाषा में, चीनी भाषा में, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शब्द आ जाता है। अब रीम शब्द को सेहे की बोलते हैं जापानीज लोग, रीम जो अपने यहाँ रीम शब्द आता है, तो जब हम उनके यहाँ पर वो टर्म्स वगैरह में इंटरनेट पर सर्च किया तो फिर वो पेज हमारे पास अभी निकाला हुआ रखा हुआ है, तो वो ऐसे जो आकार पूरा रीम का बना हुआ है, और वो लोग उसको सही की मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो संस्कृत के शब्द हैं, अक्षर हैं, वो सारे विश्व में फैले हुए हैं। अब उन्होंने उसको जिस रूप में उच्चारित किया है, जैसा उनका इंटरप्रिटेशन है, जैसे अपने यहाँ संस्कृत में कुछ शब्दों का उच्चारण जो लोग ठीक से नहीं करते तो फिर वो शब्द बदल जाते, ज्ञान बन गया ना एक शब्द, ज्ञान शब्द कहाँ से बना, ज्ञान शब्द से बन गया। अब ज्ञान शब्द को गुजराती लोग ज्ञान बोलते हैं, मराठी लोग ज्ञान बोलते हैं, और हिंदी भाषी लोग ज्ञान बोलते हैं, शब्द क्या था, ज्ञान था। तो ऐसा कन्वर्जन होते होते भाषा और उच्चारण बदल जाते हैं। तो हिट भाए ये शब्द हमने आपके ध्यान में लाने की कोशिश की है कि मेरुस से हिट भाए मतलब मेरु पर्वत के निचले भाग में, सत्विरज्जु सात राजू तक अहलो हवे अधोलोक होता है, यानी नीचे मेरु पर्वत के नीचे सात राजू वाला अधोलोक, और उड्डम में उड्डलो हो मेरु पर्वत के ऊर्ध्व में ऊर्ध्वलोक है, ठीक है ना। कल बताया था कि मेरु पर्वत के एक बाल ऊपर ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है, मतलब यहां से गिनोगे तो ये यहां से सात राजू पूरा ऊर्ध्वलोक है, और नीचे अगर देखो तो फिर ये संग्रह की अपेक्षा से कथन है, मेरु को मिलाकर सात राजू होते हैं, मेरु को मिलाकर सात राजू होता विस्तार। बता रहे ना, वो आगे बता रहे, मेरु समो मज्जिमो लो, क्या लिखा है, मेरु समो मज्जिमो लो, यानी मेरु के समान, मेरु जितना ऊंचा है उसके बराबर मज्जिमो लो मध्यम लोक है, इसके आगे की गाथा देखिए, दी संति जत्थ अत्था जीवादिया सभण रे लो तस्स सिहरम मिसिद्धा अंत विहीना विरायन्ते। दंसंती दीसंती, वैसे दोनों रूप बन सकते हैं, प्राकृत भाषा में दोनों भेद होते हैं, इसमें टिप्पण में भी नहीं दिए। एक मिनट टीका में देख लें क्या है। सलोक भण्यते यत्र जीवादय दिकाह अर्थाह द्रव्याणि दृश्यन्ते लोक्यन्ते दंसन्ति दीसन्ति। दीसन्ति पाठ ज्यादा निकट है, जो संस्कृत रूप है ना उसका, दृश्यन्ते, दृश्यन्ते के अधिक निकट दीसन्ति बनता है। और दंसन्ति जो होता है वो वैसे सुधारना नहीं, उसको उसके बाजू में लिख सकते हैं आप। पाठ भेद होते हैं क्योंकि व्याकरण बहुत विस्तृत है, कभी भी कोई शब्द अपने को सुधारने की जरूरत नहीं। कहीं अगर एकदम गलत हो तो बता सकते हैं, वो एक अलग बात हो गई, एकदम ही प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो बात अलग है। दीसंती शब्द बराबर है। तो जत्थ जहाँ पर, देखो लोक की परिभाषा बता रहे हैं, लोक किसको कहते हैं, तो बोलते हैं कि जहाँ पर जत्थ जीवादिया अत्था, जीवादिक जो अर्थ यानी पदार्थ, दीसंती दृश्यन्ते अवलोक्यन्ते देखे जाते हैं। यहाँ आकाश के जितने स्थान में जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं, सलो भण्डे वह लोक कहा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में, कि जहाँ आकाश आकाश के साथ साथ और भी पांच द्रव्य दिखलाई पड़ते हों, वो जो हिस्सा है आकाश का लोक कहलाता है। और तस् सिहरम्मी, उस लोक के शिखर पर अंत विहीना सिद्धा विरायन्ते, अंत रहित अंत विहीन सिद्ध परमेष्ठी विरायन्ते यानी विराजित होते हैं, यानी विराजमान रहते हैं, यानी लोक के शिखर पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। ए इंदिये ही भरिदो पंच पयारे ही सवदोलो तस्नाणी ये वितसा न बाहिरा होंति सवत। लो पंच पयारे ही एंदिये ही सवदो भरिदो, ये जो लोक है पांच प्रकार के एकेंद्रीय जीवों द्वारा सवदो सब तरफ से भरिदो भरा हुआ है। प्राकृत भाषा बहुत अच्छी है, एकदम सरल भी है। और ये जैसे हम अन्वय लगा रहे हैं ना, उस पर अगर आप ध्यान देंगे गाथा को देखते हुए, तो फिर सीख सकते हैं। हमने ऐसे ही सीखे, प्राकृत व्याकरण में नहीं आता, लेकिन गुरुजी जब लगाते थे अन्वय, तो फिर उसको सुनते सुनते हमने सीखी है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कहना इसको, जैसे बच्चा माँ की बोली सुनते सुनते गुजराती मराठी कन्नड़ पंजाबी सब भाषाएँ सीख लेता है। हमने कुछ बच्चों को ऐसा भी देखा कि जो संस्कृत भाषा सीख गए, क्या उनकी जो आंटी है वो पूरा संस्कृत में ही बात करती है। मुक्तागिरी में हमने देखा था कि वो बच्चे चल रहे थे साथ में, छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब ऐसे ऐसे दौड़ लगा रहे थे मुक्तागिरी पहाड़ पे चढ़ते समय, और उनकी जो आंटी थी वो पूरे संस्कृत में ही बात करती थी। उनने स्पेशल ट्रेनिंग ली थी संस्कृत बोलने की, तो इतना फास्ट बोलती थी कि मतलब कभी कभी महाराज लोग और संस्कृत जानने वाले लोग भी उतना फास्ट नहीं बोल पाए, इतना बोलचाल वाली संस्कृत, ये शास्त्रीय संस्कृत नहीं। तो वो बच्चे भी वैसी बात करते थे पूरी संस्कृत में, क्योंकि जिसका कोरा दिमाग होता है उसमें जो डाल दो आप स्लेट पूरी भर जाती है उसमें, तो वो संस्कृत जानते थे। तो ऐसी ये प्राकृत भाषा भी इतनी सरल है। अगर आप लोगों में से भी कोई भी सीखना चाहता हो तो देखो कितने हम जो अर्थ बता रहे हैं आपको वो सरल से सरल करके बता रहे हैं, नहीं तो फिर उसको हम शास्त्रीय भाषा में भी कठिन शब्दों में भी बता सकते थे, लेकिन क्या बता रहे देखो। लोवो, लोवो माने लोक, सवदो सब तरफ से, पंच पयारे ही एन दिए ही भरिदो, पांच प्रकार के एकेंद्रियों के द्वारा भरिदो भरा हुआ है। आ रहा ना सरल एकदम, माने कहने का मतलब ये हुआ कि 343 राजूप प्रमाण जो लोक है वहां कोई ऐसा स्थान बचा नहीं है जहां पर एकेंद्रीय जीव न भरे हों। ठीक है, अब तो एकदम सरल है उसका तात्पर्य। फिर इसके आगे क्या कह रहे हैं, तसा त्रस नाड़ी ये भी होती, त्रस जीव होते हैं वो सिर्फ त्रस नाड़ी में ही होते हैं, न सबवत्त बाहिरा होती, सब तरफ बाहर त्रस नाड़ी के बाहर त्रस जीव नहीं हो सकते, त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही पाया जाता। माने लोक में भी जैसे तीन लोक है और तीन लोक में भी एक बीच वाला क्षेत्र है ऊपर से लेकर के नीचे तक, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक, तीनों लोकों में एक हिस्सा ऐसा है जिसका नाम है त्रस नाड़ी, और उस स्थान पर त्रस नाड़ी में ही त्रस जीव पाए जाते हैं, न सबवत्त बाहिरा, सब जगह बाहर त्रस जीव नहीं मिलते, त्रस नाड़ी के, त्रस नाड़ी के भीतर ही त्रस जीव होते हैं। कितनी छोटी छोटी सरल सरल गाथा है, लोक का वर्णन इतना सुंदर और इतना सुगम कहाँ मिलेगा आपको। तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो फिर वहाँ विषकम्ब और फिर सब बातें आती है, कहीं कहीं लोग भारी महसूस करते हैं। यहाँ एकदम सीधी सीधी बात, पुण्णावे अपुण्णावीय थूला जीवा हमन्ति साहारा छव्विह सुहुमा जीवा लोयाया से विसववत्त। जीवा पुण्णावी अपुण्णावी हवन्ति, जीव जो होते हैं पूर्ण भी होते हैं अपूर्ण भी होते हैं। पूर्ण का मतलब क्या है, प्राण धारण की शक्तियां जिन्होंने धारण कर ली वो पूर्ण कहलाते हैं, और जिनको वो शक्ति प्राप्त नहीं हुई और वैसे ही मरण हो जाए वो अपूर्ण जीव कहलाते हैं। माने कोई जीव आया गर्भ में गर्भस्थ बनने के लिए और उसका मरण असमय में हो जाए, गर्भ में भी मरण हो सकता है, ये पूर्ण जीवों की बात बड़ी विचित्र है। पर्याप्तियां पूर्ण तो करता ही है गर्भ में आने वाला जीव, और फिर धवला की सातवीं पुस्तक में ऐसा भी उल्लेख है कि कोई जीव नरक से निकलकर मनुष्य पर्याय में माँ के गर्भ में आया और गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो गई और मरकर वापस नरक चला गया। क्या विचित्र कर्मों की स्थितियां हैं, माने उसने गर्भ में ऐसे पाप कमा लिए अपने भावों के संस्कार से कि उसको वापस नरक जाना पड़ गया। धवला की सातवीं पुस्तक, क्षुद्रक बंध उसका नाम है उस पुस्तक का, वो खंड है, उसमें ये उल्लेख है कि वो जीव वापस चला जाता। इसी प्रकार कोई जीव देवगति से मां के गर्भ में आया और गर्भ में ही अकस्मात उसकी आयु पूर्ण हो गई और फिर वापस देव बन गया। अब देव की आयु कम से कम कितनी होती है बोलो, वही डरने की बात नहीं, गलत बोलोगे तो गलत सही, उसमें क्या है, इसमें शर्माने की क्या बात है, भगवान बैठा सामने, छुपाने से थोड़ी बचने वाला है कुछ। 10,000 वर्ष कम से कम पूछा था हमने, 33 सागर तो उत्कृष्ट आयु हो गई, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायन भवनेशु च व्यवनंतराणाम च, ठीक है ना। और ज्योतिष के देवों की कम से कम आयु कितनी, तदष्ट भागो परा, एक पल्ले का आठवां भाग। और सौधर्म स्वर्ग के देवों की जघन्य आयु कितना, अप्रापल्योपम अधिकम। ये सब सूत्र अगर अपन कंठस्थ कर लो, तत्वार्थ सूत्र अगर पक्का हो जाए तो फिर आपको कोई घुमा नहीं सकता, घुमाने का मतलब भ्रमित नहीं कर सकता, घुमाने का मतलब वो नहीं स्कूटर में लेकर घुमाने चला जाए, वो नहीं, भ्रमित नहीं कर सकता। तत्वार सूत्र मजबूत होना चाहिए, सिद्धांत ग्रंथ कंठस्थ तो खर कर ही लेना चाहिए। तो जीव दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक जीवों की ये स्थिति है कि गर्भ में आने के बाद वो वापस नरक भी जा सकते हैं, देवलोक में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तो अपने भावों में जैसा भी कर्म बांध ले, वो आयु बंध के समय जैसे परिणाम हो जाए जीव के, वहां की आयु उसको बंध सकती है, बंध जाती है। और थूला जीवा, अब स्थूल जीव जो होते हैं इनमें, अपर्याप्तक का मतलब तो यह है कि पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की, पर्याप्ति का मतलब प्राण धारण की शक्ति, प्राण धारण की शक्ति उसको प्राप्त नहीं हो सकी और प्राणांत हो गया, मतलब मरण हो गया, उसको अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। और फिर दूसरे वो होते हैं जो पर्याप्तक होते हैं, प्राण धारण कर लिए और बाद में मरण हो गया, पर्याप्तियां पूर्ण करने के बाद, तो वो जल्दी भी हो सकता है और फिर अपनी आयु पूरी लंबी आयु पूर्ण करने के बाद भी हो सकता है। अब इसमें जीवों में स्थूल और सूक्ष्म ऐसे दो भेद भी होते हैं। देखो ये चार भेद हो गए, पूर्ण अपूर्ण, ये दो भेद हो गए जीवों के। पूर्ण को पर्याप्तक कहते हैं टेक्निकल भाषा में, और अपूर्ण को अपर्याप्तक। अब ये इतना सुंदर वर्गीकरण आपको कहीं किसी मत में नहीं मिलने वाला, जीवों का और कर्मों का जो वर्गीकरण है, जिसको अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन की कला जैनाचार्यों के पास जैसी थी, वैसी संसार में और कहीं आपको मिलने वाली नहीं है। इतना सुंदर उन्होंने क्लासिफाई किया, दो विभाग किए जीवों के, पूर्ण अपूर्ण। फिर ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। फिर इसमें भी स्थूल और सूक्ष्म में भी फिर और विभाजन करते चले जाओ, तो विभाजन करते करते बहुत विभाग हो जाते हैं जीवों के। तो 26 सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म 6 प्रकार के होते हैं, और वे 6 प्रकार के सूक्ष्म जीव लोयाया से सवत्थ भी हवंती, लोकाकाश में सब जगह होते हैं सूक्ष्म जीव। लेकिन स्थूल जीव और सूक्ष्म जीव में अंतर क्या है? यहां पर वो परिभाषा नहीं लगाना कि जो आंखों से न दिखे सो सूक्ष्म और आंखों से दिखे सो स्थूल, ये परिभाषा नहीं है। यहां सूक्ष्म और स्थूल ये नाम कर्म के उदय से होने वाले शरीर का परिणमन है। माने जिस जीव को सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है जो न तो किसी से टकरा सकता है, न किसी को आघात पहुंचा सकता है, न किसी के द्वारा आघात को प्राप्त हो सकता है, मतलब कोई उससे नहीं टकरा सकता, वो किसी दूसरे से नहीं टकरा सकता, वो दीवारों से भी पार निकल जाए, माने उसको कहीं कोई अड़चन नहीं है। शरीर पुद्गल परमाणुओं से बना है, लेकिन परमाणुओं का परिणमन नाम कर्म के उदय से ऐसा हुआ है कि वो परमाणु अब सूक्ष्म परिणति वाले हो गए हैं। सूक्ष्म परिणति वाले हो गए इसका मतलब ये है कि उन परमाणुओं को कोई रोक नहीं सकता, वो किसी को रोक नहीं सकते। ऐसे जो जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, वो 6 प्रकार के हैं और लोकाकाश में सर्वत्र पाए जाते हैं। और पहले वाले जो बताए थे स्थूला जीवा, स्थूल जीव जो होते हैं सहारा हवंती, आधार सहित होते हैं, निराधार नहीं होते। सूक्ष्म जीव निराधार है, एक शरीर है उसमें जितने जीव रह रहे हैं रह रहे हैं बस, उनको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। उड भी जल गिवाऊ चत्तारी भी होती बायरा सुमा सहारण पत्तेया बनपति पंचमा दुविहा। छह प्रकार के सूक्ष्म जीव, एक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। गाथा में देखते जाओ, पुड़वी, पुड़वी यानी पृथ्वी, जल तो जल ही लिखा हुआ है, फिर जलग्गी, लुक सूत्र से अ का लोप हो गया है अग्नि का, और अग्नि में से नी जो था वो न जो है ग के रूप में परिवर्तित हो गया व्याकरण से, तो अग्नि का अग्गी बन गया, अग्गी का आगी बन गया हिंदी में, और आगी का शॉर्ट फॉर्म आग बन गया। ठीक है ना, शब्दों की ऐसी रचना होती है, भाषा में इस प्रकार से परिवर्तन आता है। पुरानी हिंदी अलग थी, आज की हिंदी बदल चुकी है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, वायु शब्द से वायु बन गया, और ये बहुवचन है इसलिए दीर्घ ऊ हो गया है वायु। और चत्तारी भी होंती बायरा सुमन, ये चारों प्रकार के स्थावर, बादर और सूक्ष्म दो भेद वाले होते हैं। तो सूक्ष्म जो 6 भेद बताए थे उनमें से 4 तो यही हो गए, और ये 4 बादर भी होते हैं, इतना अपने को ख्याल रखना है। बादर का मतलब स्थूल, जो ऊपर की गाथा में स्थूल शब्द था ना, जो दूसरों से टकराते हैं, आधार सहित होते हैं, ऐसे जो जीव हैं उनको स्थूल जीव कहते हैं अथवा बादर भी कहते हैं, और इनको सूक्ष्म कहते हैं जो कहीं किसी से टकराने वाले नहीं हैं। अब इसके बाद वनस्पति पंचमा, पांचवा जो स्थावर जीव है वो कौन है? वनस्पति। लेकिन वनस्पति द्विहा, दो प्रकार की होती है, साधारण पत्तेया, साधारण और प्रत्येक वनस्पति। अब साधारण और प्रत्येक वनस्पति वो भी सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार की हो सकती है, बल्कि साधारण दो प्रकार के हो जाएंगे और प्रत्येक सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ऐसे दो प्रकार के हो जाएंगे। ये वर्गीकरण है। मतलब सबसे पहले ये हुआ कि जीव पर्याप्तक और अपर्याप्तक, पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। फिर ये जो पूर्ण और अपूर्ण जीव हैं ये स्थूल और सूक्ष्म ऐसे दो प्रकार के होते हैं। और स्थूल और सूक्ष्म में कैसे क्या विभाग है? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पांच स्थावर हैं। तो इनमें से जो चार है वनस्पति को छोड़कर, वे बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के होते हैं। और वनस्पति की बात जहां तक है वो दो प्रकार की होती है, साधारण और प्रत्येक। छह भेद कौन से किए हैं? ऊपर किए हुए हैं। देखो, पृथ्वी का एक सूक्ष्म है, टीका में है, जल का एक सूक्ष्म है, तेजस का एक सूक्ष्म है, वायु का एक सूक्ष्म है, नित्य निगोद वनस्पति का एक सूक्ष्म है, इतर निगोद वनस्पति का एक सूक्ष्म है। आगे समझ? यानी सूक्ष्म जीव छह प्रकार के हो गए। इसको अपने को याद रखने का है या फिर लिख लेने का, क्योंकि बाद में जब कोर्स आगे बढ़ जाएगा तब लिखना मुश्किल होगा। जो लोग सोचते हैं ना कि हम कल लिख लेंगे, और अच्छे से लिख लेंगे कल, आज जल्दी जल्दी में थोड़ा बिगड़ सकता है, कल और अच्छे से लिख लेंगे, तो फिर वो कल फिर आता ही नहीं है, क्योंकि कोर्स आगे बढ़ता ही जाता है। क्योंकि अभी देखिए आप इसके बाद कितने विभाजन और होने वाले हैं। ये छह प्रकार के सूक्ष्म जीव याद रखना, पृथ्वी का एक सूक्ष्म है, जल का एक सूक्ष्म है, वायु का एक सूक्ष्म है, वनस्पति का एक सूक्ष्म है, नहीं, अग्नि का एक सूक्ष्म, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार सूक्ष्म हो गए। और इसके बाद वनस्पति का एक में उन्होंने नित्य निगोद सूक्ष्म और इतर निगोद सूक्ष्म ऐसे जीवों के छह भेद कर दिए। छह प्रकार के जीव सूक्ष्म जीव। और फिर यहां वनस्पति के दो विभाग किए, साधारण और प्रत्येक, ये दो प्रकार की वनस्पति हो गई। अब और आगे देखिए और विभाजन कर रहे हैं, साहारणाविदुविहा अनायिकालाय साइकालाय तेविय बादर सुहुमा सेसापुण बायरा सव्वे। स्पष्ट हो गया। आचार्य कहते हैं कि साधारण जो है वनस्पति, अभी वनस्पति के दो भेद किए थे पहले, 124वीं गाथा में साधारण और प्रत्येक ऐसे दो भेद किए थे वनस्पति के। उनमें साधारण वनस्पति स्वरूप की अपेक्षा और काल की अपेक्षा दो प्रकार की है, एक अनादिकाल वाली साधारण वनस्पति और दूसरी सादिकाल, वही नित्य और अनित्य जिसको इतर भी कहते हैं, और तेविय और वे भी बादर सूक्ष्म दोनों प्रकार के होते हैं। अब फिर बाकी जितने जीव बच गए, इन पांच स्थावरों को हो गया ना वर्णन, पांच स्थावरों को छोड़कर जितने जीव बाकी हैं वे सब वे बायरा, सभी बादर होते हैं, सूक्ष्म कोई भी नहीं होता। कुछ जीव अपने को, अपन बोलचाल में जो सूक्ष्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात में सूक्ष्म जीव गिरते हैं भोजन में, इसलिए रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए, वो सूक्ष्म जीव उसको कहते हैं जो आंखों से नहीं दिख रहे। लेकिन यहाँ जीवों के जो विभाजन में अपन जीवों की गिनती करेंगे तो यहाँ पर उनको सूक्ष्म जीव नहीं कह सकते। क्या कहा है यहाँ पर? सेसा सव्वे बायरा, शेष सभी जीव, शेष सभी यानी त्रस। स्थावरों की चर्चा पूरी हो गई, अब शेष कौन रहे? त्रस। तो सारे त्रस जीव बादर ही होते हैं, कभी भी त्रस पर्याय में सूक्ष्म नाम कर्म का उदय नहीं होता। बादर और स्थूल एक ही चीज है, स्थूल और बादर एक अर्थवाची है ना, अब भी बतलाया था। और देखिए आगे, और कोई प्रश्न? अनादिकालीन साधारण वनस्पति और सादिकालीन साधारण वनस्पति, इसका क्या अर्थ है? अनादिकालीन साधारण वनस्पति, साधारण वनस्पति को आप निगोद कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में, क्योंकि साधारण का लक्षण आगे दे रहे हैं अगली गाथा में। हाँ, अनादिकाल से निगोद में ही है वो, ऐसे जीव को अनादिकालीन कहते हैं। और फिर सादिकालीन उसको कहते हैं कि जो निगोद से तो बाहर घूमा है लेकिन वापस निगोद में गया है, तो वापस गया तो किसी न किसी तारीख पे गया होगा, तो काल आदि हुआ कि नहीं, प्रारंभ हुआ कि नहीं, उस तारीख से चला गया वो निगोद में, तो वो सादिकालीन कहलाते। ऐसे दो प्रकार के साधारण वनस्पति का एक जीव होते हैं। साधारण का अर्थ निगोद भी है, अनंत काय भी है, ठीक है। अब आगे उसका लक्षण बता रहे हैं, लक्षण बल्कि उसका स्वरूप बता रहे हैं। साहारणानित जेसिम आहार उस्सास काय आऊणी ते साहारण जीवा नंतानंत पमाणानम। अनंतानंत प्रमाण वाले जो जीव हैं संसार में, उनमें जिसम आहार उस्सास काय आऊणी साहारणानी, जिनका आहार, जिनका उच्छ्वास, जिनकी काया और जिनकी आयु साधारण यानी एक है, समान है, ते साहारण जीवा, माने उनकी काय यानी शरीर एक होगा, जीव अनंत होंगे, शरीर एक है, उसके मालिक अनंत जीव है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक शरीर किसको कहते हैं? एक शरीर का एक मालिक हो, जैसे अपन प्रत्येक है, अपन साधारण नहीं है। प्रत्येक का मतलब क्या हुआ कि अपना जो शरीर है उसके स्वामी अपन है, स्वामी है। आश्रय से रहने वाले जीवों का शरीर ये शरीर नहीं है, इस शरीर के आश्रय से कुछ जीव दूसरे रहते हैं, जैसे कानों में और भी शरीर के अन्य हिस्सों में कई प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं, पेट के अंदर भी कृमियां वगैरह होते हैं। तो ये जो जीव हैं उनके अपने निजी शरीर अलग हैं, लेकिन वो अपने शरीर के आश्रय से रहते हैं, इसलिए अपना शरीर उनका शरीर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो अपना शरीर अपना ही शरीर है, इसलिए अपन प्रत्येक श्रेणी के जीव हो गए। स्पष्ट हो गया? फिर इसके आगे साधारण जीवों का स्वरूप जो बतला रहे हैं वो ये है कि जिनका शरीर एक है लेकिन नंतानंत प्रमाणानम, प्रमाण कितना है उसमें, कितने जीव द्रव्य हैं? अनंतानंत, एक शरीर में अनंतानंत जीव, इसको कहते हैं साधारण जीव। माने शरीर एक है और आहार एक है, उच्छ्वास एक है, जैसे एक उच्छ्वास, सांस एक ली अंदर या छोड़ी तो फिर सब एक साथ ही चलेगी, अनंतानंत जीवों का उच्छ्वास आहार एक साथ होगा। और आऊणी, आयु भी सबकी समान है, एक का मरण होने पर बाकी सबका भी साथ में ही मरण होगा, शरीर एक ही है उनका, जीव अनंत है उस एक शरीर में रहने वाले। और इसको निगोद भी कहते हैं, नियताम गाम पृथ्वीम भूमिम ददाति तत् निगोदम। नियम से जहां अनंतानंत जीवों को रहने का स्थान मिलता है उस शरीर को निगोद शरीर कहते हैं, और उसी का नाम साधारण वनस्पति है, उसी का नाम अनंत काय है। ये तीन शब्द एक अर्थवाची है, साधारण, निगोद, अनंत काय। नय जेसिम पडिखलणम, अच्छा एक गात पेज ज्यादा पलट गए, ठीक है। हम्म, वो जीव कांड की गाथा दी होगी। नहीं नहीं रहने दो, एक मिनट, इसमें हम पहले देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये तो इसमें भी दी हुई है ना, जत्थिक कुमरदि जीवो तत्थ तु मरणम हवे अनंतानम। ये उसी का स्वरूप बताया जो उस गाथा में था ना, उसी को अन्य शब्दों में अन्य ग्रंथों में आचार्यों ने बतलाया है। इसके आगे वाली गाथा देखिए अपन, वो बात तो समझ में आ गई ना कि जिन जीवों का शरीर एक होता है, श्वासोच्छ्वास एक होती है, आहार और आयु भी एक होती है, जीव अलग अलग हैं, आयु का प्रमाण एक होगा,